दानियल की पुस्तक संख्या 118। यरूशलेम के लिए भविष्यवाणी पूर्ण चेतावनी, अंतकालीन घटनाओं का प्रतीकात्मक चित्रण।
63 से वर्ष 70 तक की चीन के तावनी के वे 7 वर्ष जिन्हें उस व्यक्ति ने उद्घोषित किया था जो यरूशलेम की गलियों में ऊपर नीचे घूमते हुए नगर पर आने वाली विपत्तियों की घोषणा करता फिरता था का प्रतिरूप यरूशलेम को दी गई 3.5 वर्ष की चेतावनी में पहले से दर्शाया गया था। पहले मसीही की सेवकाई में 3.5 वर्ष और फिर चेलों की सेवकाई में 3.5 वर्ष। पूर्व लेखों में यह पहले ही बताया गया है कि यरूशलेम का विनाश क्रूस के समय ही हो गया सकता था या बाद में स्तेफनुस पर पत्थर बरसाए जाने की घटना के समय, परंतु परमेश्वर की दीर्घ सहनशीलता के कारण उसने अपने न्याय को उस नगर और उसके लोगों पर टाल दिया।
और जिस किसी पर वो गिरेगा उसे पीसकर चूर कर डालेगा। जिन लोगों ने मसीह को अस्वीकार किया था उन्हें शीघ्र ही अपने नगर और अपने राष्ट्र का विनाश देखना था। उनकी महिमा टूट जाएगी और वायु के सामने धूल के समान तितर बितर हो जाएगी। और वो क्या था जिसने यहूदियों का नाश किया? वही चट्टान जिस पर यदि उन्होंने निर्माण किया होता तो वही उनकी सुरक्षा होती। वो परमेश्वर की भलाई थी जिसका उन्होंने तिरस्कार किया। वो धार्मिकता थी जिसे उन्होंने ठुकराया। वो दया थी जिसकी उन्होंने उपेक्षा की। मनुष्यों ने अपने आप को परमेश्वर के विरोध में खड़ा कर लिया और जो कुछ उनका उद्धार होता वही उनके विनाश में परिणत हो गया। जिसे परमेश्वर ने जीवन के लिए ठहराया था उसी को उन्होंने मृत्युओं का कारण पाया। यहूदियों द्वारा मसीह को क्रूस पर चढ़ाने में यरूशलेम का विनाश निहित था। कलवरी पर बहाया गया लहू वही भार था जिसने उन्हें इस संसार के लिए और आने वाले संसार के लिए विनाश में डुबो दिया। ऐसा ही उस महान अंतिम दिन में होगा जब परमेश्वर के अनुग्रह को अस्वीकार करने वालों पर न्याय आ पड़ेगा। मसीह जो उनके लिए ठोकर की चट्टान है तब उन्हें प्रतिशोध लेने वाले पर्वत के समान दिखाई देगा। उसके मुखमंडल की महिमा जो धर्मियों के लिए जीवन है दुष्टों के लिए भस्म कर देने वाली आग होगी। ठुकराए गए प्रेम और तिरस्कृत अनुग्रह के कारण पापी का विनाश होगा। अनेकों दृष्टांतों और बार बार दी गई चेतावनियों के द्वारा यीशु ने ये दिखाया कि परमेश्वर के पुत्र को अस्वीकार करने का यहूदियों के लिए क्या परिणाम होगा। इन वचनों में वे हर युग के उन सब लोगों से संबोधित थे जो उन्हें अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने से इनकार करते हैं। हर चेतावनी उन्हीं के लिए है। अपवित्र किया हुआ मंदिर, आज्ञा न मानने वाला पुत्र, धोखेबाज बटाईदार, तिरस्कार करने वाले निर्माता, इनके समकक्ष हर पापी के अनुभव में दिखाई देते हैं। यदि वो पश्चाताप न करे तो जिस विपत्ति का उन्होंने संकेत किया था वही उस पर आएगी। द डिजायर ऑफ एजेस 600।
जिस 7 वर्षीय अवधि में उस व्यक्ति ने यरूशलेम के लिए गवाही दी उसे पहली घेराबंदी के समय 1260 दिनों की 2 समान अवधियों में विभाजित कर दिया गया। वे 7 वर्ष यरूशलेम के विनाश का प्रतीक थे और मसीह तथा शिष्यों के सेवा कार्य के 7 वर्ष यरूशलेम के विनाश की शुरुआत के प्रतीक थे और यीशु हमेशा अंत को प्रारंभ से दर्शाते हैं। वे 7 वर्ष उत्तरी राज्य के विरुद्ध 7 काल द्वारा भी प्रतीकित थे जो 1260 वर्षों की 2 समान अवधियों में विभाजित था। जब आधुनिक रोम मूर्ति पूजक और पापसी रोम द्वारा भौतिक और आत्मिक यरूशलेम को रौंदने के इतिहास को दोहराएगा और जब आधुनिक रोम वर्ष 63 से 70 तक उस पुरुष द्वारा दी गई चेतावनी के 2 कालों के उन दोनों इतिहासों को दोहराएगा और जब आधुनिक रोम उस इतिहास को दोहराएगा जिसका प्रतिनिधित्व उन 2 अवधियों ने किया था जब मसीह और शिष्य 3.5 वर्ष तक यरूशलेम में आते जाते रहे, तब यद्यपि अंतिम दिनों में समय अब नहीं रहा 2 पृथक काल प्रकट होंगे। उन 2 अवधियों में से अंतिम वो प्रतीकात्मक 42 महीनों की अवधि है जिसमें जब शीघ्र आने वाला रविवार का कानून लागू होगा और उसका घातक घाव भर दिया जाएगा। आधुनिक रोम निष्ठावान विश्वासियों पर अपना अंतिम उत्पीड़न अंजाम देगी। वो प्रतीकात्मक 42 महीने 2 अवधियों में दूसरी है और वही आधुनिक रोम के कार्यान्वयनकारी न्याय की अवधि है। उस अवधि से पहले लाओदीकियाई एडवेंटवाद में जीवितों का जांच पड़ताल न्याय होता है। वास्तविक यरूशलेम को चेतावनी देने वाला वो व्यक्ति टाइटस की घेराबंदी में मारा गया। वो विनाश के समय नहीं मरा, बल्कि उस घेराबंदी के दौरान मरा जो विनाश से पहले हुई थी, क्योंकि यरूशलेम के विनाश में एक भी मसीही नहीं मरा।
7 वर्षों तक एक व्यक्ति यरूशलेम की गलियों में गली गली घूमता रहा, उस नगर पर आने वाली विपत्तियों की घोषणा करता हुआ। दिन रात वो ये उग्र शोक गीत गाता रहा। पूरब से एक आवाज, पश्चिम से एक आवाज, चारों पवनों से एक आवाज, यरूशलेम के विरुद्ध और मंदिर के विरुद्ध एक आवाज, दूल्हों और दुल्हनों के विरुद्ध एक आवाज, संपूर्ण प्रजा के विरुद्ध एक आवाज। इबिड, ये विचित्र मनुष्य कैद किया गया और उसे कोड़े लगाए गए, पर उसके होंठों से कोई शिकायत नहीं निकली। अपमान और दुर्व्यवहार का वो बस यही उत्तर देता, हाय हाय यरूशलेम पर, हाय हाय उसके निवासियों पर, जिस घेराबंदी की उसने पहले से भविष्यवाणी की थी उसमें मारे जाने तक उसकी चेतावनी की पुकार थमी नहीं। द ग्रेट कॉन्ट्रोवर्सी 29:30।
वो व्यक्ति घेराबंदी में मरा, लेकिन अंतिम विनाश में नहीं, और अंतिम विनाश परख के समय के समापन तथा 7 अंतिम विपत्तियों का प्रतिनिधित्व करता है। अतः वो व्यक्ति पहली घेराबंदी के समय यरूशलेम छोड़िंगला के संदेश का प्रतीक है। तब ईसाई भाग गए, और पहले 3.5 वर्षों में वो व्यक्ति उस समूह का प्रतीक था जो यरूशलेम में नहीं मरता, और दूसरे 3.5 वर्षों में वो परख का समय समाप्त होने से पहले मरने वाले अंतिम ईसाइयों का प्रतीक है। पहली अवधि में वो 144,000 की पहचान करता है, और दूसरी 3.5 वर्ष की अवधि में वो उस बड़ी भीड़ का प्रतिनिधित्व करता है जो दूसरी अवधि के दौरान मरती है। उस व्यक्ति का संदेश इतिहासकार ने दर्ज किया था, और उसे 6 आवाजों द्वारा व्यक्त किया गया था। जब अंततः उसे कैद कर लिया गया तो उसका 7वां और अंतिम संदेश यरूशलेम और उसके निवासियों के लिए वो था। दर्ज की गई पहली आवाज पूरब से आने वाली आवाज थी, और उसका अंतिम संदेश वो था। उसके संदेश के प्रथम और अंतिम तत्व उसी बाइबिलीय प्रतीक को दर्शाते थे जो इस्लाम का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि बाइबिल में इस्लाम को पूरब की संतान बताया गया है, और उन संतानों का प्रतिनिधित्व पूर्वी पवन द्वारा किया गया है। उसके अंतिम संदेश में वो शब्द की पुनरावृत्ति आधुनिक बाबुल के अंत को प्रतिबिंबित करती है, जब पृथ्वी के राजा 3 बार पू करते हैं, अलास अलास दैट ग्रेट सिटी। प्रकाशित वाक्य के 18वें अध्याय के 3 पदों में जिस पराना यूनानी शब्द का अनुवाद अलास किया गया है, वही शब्द अध्याय 8:13 में वो के रूप में अनुदित है।
और मैंने देखा और एक स्वर्गदूत को आकाश के मध्य से उड़ते हुए सुना जो बड़े शब्द से कह रहा था, हाय 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 पृथ्वी के निवासियों पर, उन 3 स्वर्गदूतों की तुरही की शेष ध्वनियों के कारण जिन्हें अब तक फूंकना बाकी है। प्रकाशित वाक्य 8:13।
उस मनुष्य की हाय हाय की उद्घोषणा तीनों हायों के त्रिगुण अनुप्रयोग का प्रतिनिधित्व करती है, क्योंकि प्रथम हाय के तत्व द्वितीय हाय के तत्वों के साथ पंक्ति पर पंक्ति जोड़कर तृतीय हाय के तत्वों की पहचान कराते हैं, जैसे अध्याय 18 में पृथ्वी के राजाओं द्वारा कही गई हाय हाय की 3 अभिव्यक्तियां प्रथम और द्वितीय हाय द्वारा स्थापित तृतीय हाय का प्रतिनिधित्व करती व्यवसायी के साथ स्तते न कोई नौपानी, और द्वितीय हाय का प्रतिनिधित्व करता है क्योंकि उस व्यक्ति के संबंधित इस्लाम के संदेश को प्रतीकित करते हैं। उसके संदेश की पहली अभिव्यक्ति पूर्व से आने वाली एक आवाज थी, और पूर्व इस्लाम का प्रतीक है, लेकिन ये उस मुहर लगाने वाले स्वर्गदूत की पहचान भी है जो पूर्व में उदय होता है।
और इन बातों के बाद मैंने देखा कि 4 स्वर्गदूत पृथ्वी के 4 कोनों पर खड़े थे। वे पृथ्वी की 4 हवाओं को पकड़े हुए थे ताकि हवा न पृथ्वी पर बहे, न समुद्र पर और न किसी पेड़ पर। और मैंने एक और स्वर्गदूत को पूर्व दिशा से ऊपर उठते हुए देखा जिसके पास जीवित परमेश्वर की मुहर थी, और उसने ऊंचे शब्द से उन 4 स्वर्गदूतों से पुकार कर कहा जिन्हें पृथ्वी और समुद्र को हानि पहुंचाने का अधिकार दिया गया था, जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथों पर मुहर न लगा दें तब तक न पृथ्वी को, न समुद्र को, न पेड़ों को हानि पहुंचाओ। और मैंने उन लोगों की संख्या सुनी जिन पर मुहर लगाई गई थी। इसराइल की संतानों के सब गोत्रों में से 144,000 मोहरबंद किए गए थे। प्रकाशित वाक्य 7 लाख तक चाह।
कर्मेल पर्वत पर एलिया की कहानी में जब उसने समुद्र की ओर देखा और एक बादल देखा तो वो पश्चिम की ओर देख रहा था, क्योंकि कर्मेल पर्वत भूमध्य सागर के निकट स्थित है।
और सातवीं बार ऐसा हुआ कि उसने कहा, देखो समुद्र से एक छोटा सा बादल उठ रहा है जो मनुष्य के हाथ के समान है। तब उसने कहा, ऊपर जा, अहाब से कह अपना रथ तैयार कर और नीचे उतर जा, कहीं ऐसा न हो कि वर्षा तुझे रोक ले। 1 राजा 18:44।
एलिया का मुख पश्चिम की ओर भूमध्य सागर की दिशा में रहा होगा। लूका के 12वें अध्याय में मसीह कहते हैं कि उनका संदेश विभाजन का संदेश है।
क्या तुम ये समझते हो कि मैं पृथ्वी पर शांति देने आया हूं? मैं तुमसे कहता हूं, नहीं, परंतु विभाजन। क्योंकि अब से एक ही घर में 5 जन बंटे रहेंगे, 3-2 के विरोध में और 2-3 के विरोध में, पिता पुत्र के विरुद्ध और पुत्र पिता के विरुद्ध, माता बेटी के विरुद्ध और बेटी माता के विरुद्ध, सास बहु के विरुद्ध और बहु सास के विरुद्ध। और उसने लोगों से भी कहा, जब तुम पश्चिम से बादल उठते देखते हो तो तुरंत कहते हो वहां वर्षा होगी, और ऐसा ही होता है। और जब तुम दक्षिणी हवा चलती देखते हो तो कहते हो गर्मी होगी, और ऐसा ही होता है। हे कपटियो, तुम आकाश और पृथ्वी का रूप पहचान सकते हो तो ये समय क्यों नहीं पहचानते? लूका 12 कैपनेक 6:6।
यरूशलेम के लिए दूत का संदेश, उस पर अल्फा और ओमेगा के हस्ताक्षर हैं, क्योंकि आरंभ और अंत तीसरी विपत्ति के इस्लाम की पहचान कराते हैं, और पूरब की आवाज के साथ ये एक ही समय में इस्लाम के संदेश को मुहरबंदी के संदेश के रूप में पहचानता है। पश्चिम से आने वाली दूसरी आवाज पिछली वर्षा की पहचान कराती है, जो कि अंतिम वर्षा है, और सब भविष्यद्वक्ता अंतिम दिनों के विषय में बोलते हैं। पश्चिम का संदेश पिछली वर्षा के संदेश का एक प्रतीक है, जो उपासकों के 2 वर्ग उत्पन्न करता है। उनमें से एक वर्ग पिछली वर्षा के संदेश को पहचान नहीं सकता, क्योंकि वे इस समय को नहीं समझते। दूत के संदेश का अगला तत्व 4 पवनों की वाणी है, जो मुहरबंदी का संदेश भी है और इस्लाम के क्रोधित घोड़े का संदेश भी, जैसा कि तीसरे हाय द्वारा दर्शाया गया है। अगला तत्व यरूशलेम और मंदिर के विरुद्ध है, और इस प्रकार वो सभी भविष्यद्वक्ताओं के उस संदेश की पहचान कराता है जो उन लोगों के एक वर्ग को चिन्हित करता है जिन्हें छोड़ दिया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने अपने उद्धार का दावा मसीह पर नहीं बल्कि मंदिर पर और परमेश्वर के चुने हुए लोगों के रूप में अपनी विरासत पर आधारित किया है। वे वही है जिन्हें पवित्र इतिहास भर इस प्रकार घोषणा करते हुए प्रस्तुत किया गया है, यहोवा का मंदिर, यहोवा का मंदिर हम हैं। यरूशलेम और मंदिर के विरुद्ध ये संदेश ही लाओदिकिया का संदेश है।
इस पर आश्चर्य करने की आवश्यकता नहीं कि कलीसिया पवित्र आत्मा की शक्ति से जीवंत नहीं है। पुरुष और स्त्रियां मसीह द्वारा दी गई शिक्षा को एक ओर रख रहे हैं, क्रोध और लोभ विजय प्राप्त कर रहे हैं, आत्मिक मंदिर दुष्टता से भरा हुआ है, मसीह के लिए कोई जगह नहीं है। मनुष्य अपनी कुटिल राहों पर चलते हैं, वे उद्धारकर्ता के वचनों पर ध्यान नहीं देते, वे ताड़नाओं और चेतावनियों को अस्वीकार कर अपना मामला अपने ही हाथों में ले लेते हैं, यहाँ तक कि दीपदान अपने स्थान से हटा दिया जाता है और आत्मिक विवेक मानवीय विचारों से भ्रमित हो जाता है। यद्यपि सेवा में कमी है, फिर भी वे अपने को सही ठहराते हैं, ये कहते हुए प्रभु का मंदिर, प्रभु का मंदिर हम ही हैं। वे अपनी कल्पना के प्रकाश के पीछे चलने के लिए परमेश्वर की व्यवस्था को एक ओर रख देते हैं। रिव्यू एंड हेराल्ड 8 अप्रैल 1902।
तब दूत ने दूल्हों और दुल्हनों के विरुद्ध अपनी चेतावनी की आवाज बुलंद की, रेखा पर रेखा की विधि के प्रतीक के रूप में, क्योंकि अंतिम दिनों की भविष्यवाणी की रेखा वैसी ही होगी जैसी नूह के दिनों में थी, जब लोग ठीक उसी समय शादी ब्याह कर रहे थे जबकि विनाश की बाढ़ उनकी सांसारिक महत्वाकांक्षाओं और योजनाओं को डुबो देने ही वाली थी।
बाइबल कहती है कि अंतिम दिनों में लोग सांसारिक कामों, सुख विलास और धन कमाने में डूबे रहेंगे, वे अनंत वास्तविकताओं के प्रति अंधे हो जाएंगे। मसीह कहते हैं, जैसे नूह के दिनों में था वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आगमन भी होगा, क्योंकि जैसे बाढ़ से पहले के दिनों में लोग खाते पीते थे, विवाह करते थे और विवाह में देते थे, उस दिन तक जब नूह जहाज में प्रवेश कर गया और उन्हें कुछ पता न चला, जब तक बाढ़ आई और सबको बहा ले गई, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आगमन होगा। मत्ती 24:33 अर्थ 9। आज भी यही हाल है। लोग लाभ और स्वार्थी भोग विलास की दौड़ में ऐसे भाग रहे हैं मानो न ईश्वर है, न स्वर्ग, न परलोक। नूह के समय लोगों को उनकी दुष्टता में चौंकाने और उन्हें पश्चाताप के लिए बुलाने हेतु जल प्रलय की चेतावनी भेजी गई थी। उसी प्रकार मसीह के शीघ्र आगमन का संदेश लोगों को सांसारिक बातों में उनकी लिप्तता से झकझोरने के लिए है। इसका उद्देश्य उन्हें शाश्वत सच्चाइयों के प्रति जागृत करना है, ताकि वे प्रभु की मेज के निमंत्रण पर ध्यान दें। सुसमाचार का निमंत्रण समस्त संसार को, हर एक जाति, कुल, भाषा और लोग को दिया जाना है। प्रकाशित वाक्य 14:6। चेतावनी और दया का अंतिम संदेश अपनी महिमा से सारी पृथ्वी को आलोकित करने के लिए है। ये मनुष्य के हर वर्ग तक पहुंचना है, धनी और गरीब, उच्च और निम्न, राजमार्गों और बाड़ों तक जाओ, मसीह कहते हैं, और उन्हें भीतर आने के लिए विवश करो, ताकि मेरा घर भर जाए। क्राइस्ट ऑब्जेक्ट लेसन्स 10:29।
चेतावनी के अंतिम तत्व पर पिछले अंश में जोर दिया गया है। सभी लोगों के विरुद्ध एक आवाज के रूप में प्रस्तुत किया गया संदेश शाश्वत सुसमाचार है, जो ये दर्शाता है कि उद्धार पाने के लिए सुसमाचार की आवश्यकताओं को पूरा करना आवश्यक है। शाश्वत सुसमाचार की पहली आवश्यकता है परमेश्वर का भय मानना, और ये भय इस वास्तविकता पर आधारित है कि जीवित परमेश्वर के पुत्र मसीह को क्रूस पर चढ़ाने वाले हमारे ही पाप थे। अपनी 7 वर्षीय सेवकाई के दौरान यरूशलेम के लिए दूत के हर पहलू ने अनंत सुसमाचार का प्रतिनिधित्व किया, जो वही सुसमाचार था जिसे उन 7 वर्षों में प्रस्तुत किया गया जब मसीह ने वर्ष 27 से वर्ष 34 तक बहुतों के साथ वाचा की पुष्टि की। ये वही अनंत सुसमाचार था जो अंतिम काल की अंतिम 2 अवधियों में प्रचारित किया जाता है, और यह विशेष रूप से अंतिम वर्षा के संदेश से संबद्ध है, अर्थात ये इस्लाम के तीसरे हाय का संदेश है। ये 144,000 की मुहरबंदी, गेहूं और जंगली घास का पृथककरण, जंगली घास की लाओदिकियन अवस्था और भविष्यवाणी के त्रिगुणी अनुप्रयोग की पहचान करता है, जो रेखा पर रेखा कहलाने वाली अंतिम वर्षा की कार्यविधि का प्रतीक है। उस इतिहास में 7 वर्षों का संदेश प्रतिशोध के दिनों के भीतर भविष्यवाणी के अनुरूप स्थापित है, जो मसीह के संदेश और कार्य के प्रथम उल्लेख का एक भाग था, और उसके संदेश और कार्य को अंतिम दिनों में 144,000 द्वारा दोहराया जाना है। तब वे अपने संदेश की पहचान परमेश्वर के प्रतिशोध के दिनों की भविष्यवाणी संबंधी रूपरेखा में करेंगे। उसके वचन में परमेश्वर के प्रतिशोध के 2 बाइबलीय प्रकार प्रस्तुत हैं, अपने लोगों पर उसका प्रतिशोध और अपने शत्रुओं पर उसका प्रतिशोध। लावे व्यवस्था 26:7 परमेश्वर के विद्रोही लोगों पर उसके प्रतिशोध को दर्शाता है, और उस प्रतिशोध में पवित्र स्थान और सेना का शाब्दिक और आध्यात्मिक रूप से रौंदा जाना शामिल है। पवित्र स्थान और सेना के रौंदे जाने की प्रतीकात्मकता के भीतर परमेश्वर के शत्रुओं पर उसके प्रतिशोध की प्रतीकात्मकता भी दर्शाई जाती है। अंतिम दिनों में अपने लोगों के विरुद्ध परमेश्वर का प्रतिशोध शीघ्र आने वाले रविवार के कानून पर लाओदिकियाई एडवेंटवाद को उगल देने के रूप में दर्शाया गया है। उसी मार्ग चिन्ह पर आधुनिक बाबेल पर उसका प्रतिशोध भी आरंभ होता है। लाओदिकियाई एडवेंटवाद पर जीवितों का अन्वेषणात्मक न्याय, जिसके बाद तायर की वेश्या और उस पशु पर जिस पर वो सवार होती है और जिस पर वो शासन करती है, दंडात्मक न्याय होता है। अंतिम दिनों का वही भविष्यवाणी इतिहास है जहां हर दर्शन की पूर्ति हो जाती है। प्रत्येक दर्शन को उन 2 भविष्यवाणी कालखंडों पर लागू किया जाना है, क्योंकि पिछली वर्षा की पद्धति भविष्यवाणी की रेखा पर भविष्यवाणी की रेखा को लागू करना है। उन दोनों इतिहासों की शुरुआत में यीशु ने एक चिन्ह की पहचान की, जो ये सिद्ध करता है कि उस समय जीवित लोग पृथ्वी के इतिहास की अंतिम पीढ़ी में हैं। पहली अवधि की शुरुआत तब हुई जब 144,000 की मोहरबंदी 11 सितंबर 2001 को आरंभ हुई, उसी मार्ग चिन्ह के अंतर्गत वो चिन्ह रखा गया जिसकी पहचान मसीह ने लूका 21 में की थी। हम इस अध्ययन को अगले लेख में जारी रखेंगे।
अब भाइयों, परमेश्वर चाहता है कि हम उस व्यक्ति के साथ अपना स्थान लें जो दीपक लेकर चलता है। हम अपना स्थान वही लेना चाहते हैं जहां प्रकाश है और जहां परमेश्वर ने तुरही को एक स्पष्ट ध्वनि दी है। हम तुरही को एक स्पष्ट ध्वनि देना चाहते हैं। हम उलझन में रहे हैं और हम संदेह में रहे हैं और कलीसियाएं मृत्यु के कगार पर हैं। पर अब यहां हम पढ़ते हैं, और इन बातों के बाद मैंने एक और स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसके पास बड़ा अधिकार था, और पृथ्वी उसकी महिमा से उजियाली गई। और उसने बड़े बल से ऊंचे स्वर में पुकार कर कहा कि महान बाबुल गिर गया है, गिर गया है, और दुष्टात्माओं का निवास स्थान बन गया है, और हर एक अशुद्ध आत्मा का ठिकाना, और हर एक अशुद्ध और घृणित पक्षी का पिंजरा। प्रकाशित वाक्य 18 हंग्रीक 2। तो अब जब स्वर्ग का प्रकाश हमारे पास आता है तो हम उसे पहचानने की स्थिति में ही नहीं है। ऐसे में हम उस संदेश के बारे में कुछ भी कैसे जान पाएंगे? और जब हमारे पास इस बात का रत्ती भर भी प्रमाण नहीं होता कि परमेश्वर का आत्मा ने उन्हें भेजा है, तब यदि कोई ऐसा व्यक्ति जो हमसे सहमत हो हमारे पास आता है, तो हम उतनी ही आसानी से सबसे घोर धोखे को भी स्वीकार कर लेंगे। मसीह ने कहा, मैं अपने पिता के नाम से आया हूँ, परंतु तुम मुझे ग्रहण न करोगे। यूहन्ना 5:47 देखिए। अब मिनियापोलिस की सभा के बाद से यहाँ जो कार्य चलता आया है वही तो है, क्योंकि परमेश्वर अपने नाम में एक संदेश भेजता है जो तुम्हारे विचारों से मेल नहीं खाता। इसलिए तुम निष्कर्ष निकालते हो कि वो परमेश्वर का संदेश हो ही नहीं सकता। उपदेश और वार्ताएं, खंडेक, एकॉन 142।